2025 ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/rrl ਤੇ ਜਾਓ।
एक खबर से खुश आमदेद कहना चाहते हैं आपको और आज थोड़ा सा टाइम्ड चल रहे हैं बिकॉज आमिर इज हेडिंग टुडे और मतलब ही इज द इंचार्ज एंड ही विल कीप एवरीथिंग राइट देयर ऑन द डॉट एट द टाइम। आई हैव अ वंडरफुल पर्सन कम्स एवरी ट्यूजडे को हमारे पास तशरीफ लाते हैं, उनका बहुत शुक्रिया जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब तशरीफ लाया करते हैं एवरी ट्यूजडे को। आज हम थोड़ी सी जब उनसे बात करेंगे तो ऑफकोर्स हम कैनेडा के बारे में बात करेंगे, कैनेडा अमेरिका के ताल्लुकात की बात करेंगे। अगेन हम इतना जरूर कहते हैं कि हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है, मगर आज की मुलाकात से शुरू करेंगे और ऑफकोर्स करामतुल्लाह गौरी साहब को अपने अल्फाज पे अपनी तहरीर पे भी बड़ा अबूर है, उनका एक कथा सुनेंगे आज क्योंकि ओवल ऑफिस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, एंड लेट मी टेल यू ही इज लुकिंग वेरी डिप्लोमेटिक टुडे। आई मीन उनके लिबास से, उनकी तराश से यू कैन इमेजिन कि एक एम्बेसडर से आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम
सर, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। सबसे पहले तो हो जाए कता क्यों और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब और जनाब मार्क कार्नी साहब दोनों की मुलाकात हुई। देखिए जी, नमूद और नुमाइश हमारे ये रोल मॉडल्स हुआ करते हैं, चाहे वो हमारे दोस्तों में हों चाहे वो मिलने वाले में हों। और मैंने आम जिंदगी में यही देखा कि वो एक होता है कि आपने जो कारकर्दगी की आप बैठे हुए नजर आने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अपने फर्स्ट टर्म में सऊदी अरेबिया गए थे, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय सऊदी अरेबिया बिकॉज सऊदी अरेबिया में गोल्ड एंड 24 गोल्ड मीन्स अ लॉट। आज जब मार्क कार्नी साहब को वो इंट्रोड्यूस भी कर रहे थे तो उन्होंने खास तौर पे हाईलाइट किया कि आर ब्यूटीफुल ऑफिस 24 गोल्ड प्लेटेड। क्या फरमाएंगे
ये? मैं पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात में बात करेंगे, पहले आमिर की बात करते हैं।
अच्छा,
तुम कह रही थी कि आमिर बिल्कुल मुनासिब फैसले करता है, मुनासिब बातें करता है, मुनासिब वक्त पे करता है। तो आमिर ये सब कुछ इसलिए करता है कि उसका नाम एन से शुरू होता है, अलिफ मद जबर आ से शुरू नहीं होता।
आजकल की दुनिया में पूरी दुनिया आमिर है। किसकी बात आप करना चाहते हैं? आप कनाडा की बात कर रहे हैं, आप अमेरिका द वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका की बात कर रहे हैं। आज मैं देख रही थी कि आज कनाडा के एक जर्नलिस्ट हैं जिसने ये कहा है कि उसने एक आर्टिकल लिखा था, उसने एक ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग वो करते थे और उन्होंने एक शख्स के बारे में लिखा, उस शख्स ने जब उसको पढ़ा और उसने उनको थ्रेट दिया, उनके दफ्तर के सामने आगे खड़ा हो गया, फिर उसने उनको मुख्तलिफ तरह की थ्रेट्स दी, फिर उनको ईमेल थ्रेटनिंग ईमेल्स करना शुरू कर दी अल्टीमेट। और वो कहते हैं मैं आई वॉज हरेस्ड बाय हिम और मैं टेरर की जिंदगी गुजार रहा हूं। तो सर, जिसके पास थोड़ा सा कुछ है ना,
हाँ,
वो अलिफ मदाई है।
वो बीवी इंसान की आजमाइश ही दो बातों से होती है, या तो इख्तदार से या दौलत से। और इख्तदार और दौलत जब एक जगह जमा हो जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप बन जाता है। आज की जो मुलाकात थी ओवल ऑफिस में, जो हम सब ने अपनी आंखों से देखी, लाइव देखी, पूरे वक्त देखी, उसमें वो तहजीब और शराफत एक तरफ थी और अनानियत दूसरी तरफ थी। हमारे वजीर आजम मार्क कार्नी तहजीब और शाइस्तगी का नमूना थे, अगरचे उनको इश्ताल दिलाने वाली बातें की गई। देखो, मैं ये सोच रहा था कि वो हमारे यहां तहजीब में, हमारी तहजीब में यह है कि मेजबान हमेशा मेहमान के एहसासात का और उसके नजाकतों का ख्याल रखता है। یہی تہذیب کی شائستگی کی ثبوت ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے. لیکن ٹرمپ صاحب دنیا بھر کے سامنے وہی پرانی رٹ لگائے ہوئے تھے کہ کینیڈا ول بی بیٹر آف اف اٹ بیکمس 51st اسٹیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. اور کارنی نے اشتعال میں آئے بغیر، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تربیت کی کمی کہاں ہے اور تربیت کس طرف ہے، انہوں نے بہت ہی مناسب الفاظ میں یہ کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، سم تھنگس آر نیور فار سیل. کینیڈا کی غیرت اور حمیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے نا، تو ایک باغیرت انسان، ایک وہ انسان جس میں شرم ہے، حیا ہے، جو جس کی تربیت صحیح طریقے پر ہوئی ہے، وہ اشتعال انگیزی کے سوال کا جواب کس شرافت سے، کس متانت سے دیتا ہے، اس کا ثبوت ہمارے وزیر اعظم مارک کارنی نے آج دنیا کے سامنے دے دیا. تو میں تو یہ سوچ رہا تھا پورے وقت جب میں اس کو، اس پریس کانفرنس کو لائیو دیکھ رہا تھا، کہ انسانیت اور انسانیت کے فقدان میں کیا فرق ہوتا ہے. ایک شخص مسلسل اشتعال دلاتا رہا، مسلسل وہ باتیں کرتا رہا جو اس کے منصب اور جس کرسی پر وہ سرفراز ہے، جس بیٹھا ہوا ہے، اس کو زیب نہیں دیتی. یہ کہنا ایک آزاد مملکت کے وزیر اعظم کو یہ کہنا کہ تمہارا مستقبل بہتر ہوگا اگر تم ہمارے ہم میں شامل ہو جاؤ، ہم میں ضم ہو جاؤ، اور یا یہ کہنا، ان کا یہ دعویٰ کہ امریکہ کینیڈا کو پال رہا ہے. انہوں نے بار بار یہ کہا کہ امریکہ از سبسیڈائزنگ کینیڈا ٹو دا ٹیون آف $200 بلین اے ایئر. ایک سال میں $200 ارب کی وہ سبسڈی دیتے ہیں. آج تک میں نے ان کے منہ سے یا ان کے کسی مشیر کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ یہ $200 ارب کی سبسڈی، جس کو وہ بار بار دہراتے رہتے، وہ ہماری زبان میں کہاوت ہے نا کہ دیوانے کی بڑھ، تو وہ بار بار اس کو دہراتے رہتے، لیکن آج تک نہ انہوں نے نہ ان کے کسی مشیر نے یہ تفصیل فراہم کی ہے کہ امریکہ کینیڈا کو کس طرح 2200 ارب سالانہ کی سبسڈی دے رہا.
یہاں پہ وہ کہنا چاہتے ہیں، دیکھیے ایک بات آپ کی بڑی نالج ہے نیٹو کے حوالے سے، اور جو معاہدہ تھا کہ 2% تک یہ تمام ممالک کنٹریبیوٹ کر سکیں گے، کینیڈا وہ 2% کے ہدف کو نہیں پہنچ پایا. وہ اس کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں. اگر ابھی آپ ڈیبیٹ یاد کر لیں، جو لوگ کیوبیک سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وی آر کیئرڈ بائی امیرکا مور دین واٹ کیئر وی آر گیٹنگ فرام کینیڈا. اگر آپ وہ آپ نارتھ پول کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر ان لوگوں کے آپ نے انٹرویو سنے ہوں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نارتھ پول پہ بالکل کینیڈا کے سامنے رشیا نے اپنی بیسز بنا لی ہیں. دیر واز اے ٹائم کہ اس جگہ پہ کچھ بھی نہیں تھا، مگر ان کی آرمی اور ان کی شپس وہاں پہ اب دیکھنے کو ملتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایریے میں امریکہ ہم کو زیادہ پروٹیکٹ کر رہا ہے. کینیڈا کی غلطی ضرور تھی کہ جب اس نے انحصار کیا تو اس نے ٹوٹل امریکہ کے اوپر انحصار کر لیا. ہم نے اپنی فوج نہ بنائی، ہم نے اسلحہ نہ بنایا. دیکھیے جو باتیں غلط ہیں، مطلب ہم اگر اعتراض برائے اعتراض کریں تو
دیکھو کینیڈا نے امن کا راستہ کی راہ استعمال کی.
میں آپ کی سر بات سے ایگری کرتی ہوں، مگر ان چیزوں کے لیے نیٹو جب بنا تھا تو کینیڈا نے ایگری کیا تھا کہ ہم 2% تک پے کریں گے، جب جو بھی معاہدہ تھا ان ممالک کے درمیان. اور اب پھر جب اخراجات ہر چیز کے بڑے تو انہوں نے کہا 3% تک جائیں گے. انہوں نے کہا 2030 تک ہم 3% بھی نہیں، انہوں نے کہا ہم 2.5% تک پے کر سکتے ہیں، مگر یہاں کمیاں تھیں.
دیکھو نا، چین کے خلاف امریکہ نے جو اسٹنٹ کھڑا کیا ہے، امریکہ के लिए चीन सबसे बड़ा हरीफ बन गया है आलमी सतह पर, तो चीन ने ये तरक्की क्यों की, क्यों इस किस वजह से की? इसलिए कि अमेरिका की तुम्हें मालूम है कि दुनिया भर में 600 के करीब मिलिट्री बेसिस हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी जो सनत है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स
प्रोवाइड
है। और आइजनहावर ने जो खुद फौज से ताल्लुक रखते थे, जो 5-स्टार जनरल थे, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में यूरोप में इत्तहादियों के अफवाज की कमान की थी, उन्होंने अमेरिका के अवाम को अपनी सदारत छोड़ने से पहले क्या नसीहत की थी? उन्होंने कहा था कि खबरदार रहो कि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहीं तुम पर हावी ना हो जाए। तो ट्रंप का इसरार क्या है, कनाडा से उनको क्या गिला है, बल्कि यूरोप के तमाम नेटो रुकन ममालिक से उनको यही गिला है कि वो दिफा पर ज्यादा खर्च नहीं कर रहे, अपने अवाम की फलाह बहबूद पर ज्यादा खर्च करते हैं। अब कनाडा अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए ज्यादा खर्च करता है, इसीलिए कनाडा का सेहत आम्मा का निजाम, जिसकी आज ट्रंप ने तारीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो दुनिया में बेनजीर है। तो ट्रंप के तो सारा उनकी पॉलिसियों का डुब्बे लबाब ये है कि वो ये चाहते हैं कि अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ज्यादा से ज्यादा काम करती रहे, दुनिया भर में वो उसके हथियार और असलाह बेच बिकता रहे।
क्या एतराज है, ये सदा से ये चीजें हैं, तो आप इस नहीं, कैसे एतराज?
नहीं नहीं नहीं, नहीं एतराज की तो गुंजाइश है, एतराज ये है कि ट्रंप को, बल्कि क्या एतराज है कि कनाडा अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए ज्यादा वसाइल खर्च करता है और दिफा पर कम करता है। कनाडा ने कभी कहा अमेरिका से कि तुम हमारे दिफा के लिए आओ? कनाडा ने कभी बुलाया?
देखिए सर, ये तो हम अगर बहस करें तो हम बहस कर सकते हैं, मगर एक बात मैं बताती हूँ, आज इंडिया एटॉमिक पावर है, आज चाइना एटॉमिक पावर है, आज रशिया एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, ईरान एटॉमिक पावर, अमेरिका एटॉमिक पावर।
ईरान एटॉमिक पावर नहीं है
सर, आप कह रहे हैं नहीं था, पाकिस्तान भी एक अरसे तक नहीं था एटॉमिक पावर, ठीक है, मतलब जो भी आप कह रहे, मगर इसराइल का रिजर्वेशन है, आई डोंट वांट टू,
इसराइल एटॉमिक पावर है।
अगर कनाडा भी इतनी तरक्की कर लेता तो क्या प्रॉब्लम थी? कर लेता, बना लेता, हो सकता है टेक्निकली हम अच्छे, वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम इन
कनाडा को एटम बम बनाने की।
चलें ठीक सर, जब दुनिया में जंगें होंगी तो इन चीजों की जरूरत है। एनीवेज, मेरा सर आपसे सवाल ये है कि कनाडा ने, हम थोड़ा नशे में भी बैठे रहे कि हमने सिर्फ अमेरिका के साथ देखा, वी कुड हैव टैप्ड द होल वर्ल्ड। आपको याद होगा कि कनाडा ने अमेरिका से बढ़ के, वो कहते हैं शाह से ज्यादा शाह के जो
वफादार
होते हैं ना, वो आगे आगे चलते हैं, तो हमने चाइना के साथ भी हमने पंगा कर लिया। हालांकि अगर यूरोप को कनाडा पहले भी सप्लाई कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, मगर हमने इनसार करना ही नहीं चाहा, हमने नहीं करना चाहा, जो गलतियां हैं वो गलतियां हैं।
वो कनाडा ने यकीनन सरीहन ये गलती की कि उसकी मईशत का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर रहा।
ठीक सर,
देखो ना, मैं जो चीन की मिसाल दे रहा था, चीन ने अपने वसाइल अपनी दिफा पर खर्च नहीं किए, उसने अपने वसाइल को अपनी सनती तरक्की के लिए इस्तेमाल किया, और उसका सबूत यह है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है वो मुल्क चीन है।
चाइना भी है, इंडिया भी सब फिफ्थ पावर है दुनिया की, और आज इंडिया की जरूरत है अमेरिका को, मगर जिस दिन ये चौथी और तीसरी ताकत पे आया ना, जिस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं, दे आर रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही, मगर इस वक्त अगर आप नंबर्स के लिहाज से देखें तो दे आर स्टैंडिंग एट नंबर 5, तो अमेरिका विल नेवर एक्सेप्ट इट।
क्या
इंडिया को एट द वेरी हाई लेवल पे देख,
तो अमेरिका तो दूसरे ममालिक को इस्तेमाल करता आया है, اور اس کی جو بہترین اور یا بدترین مثال ہے وہ ہمارا وطن اول ہے. پاکستان کو تو امریکہ نے ہمیشہ کلینک کے طور پہ استعمال کیا ہے کہ جب
ہم
تک
جمپ کر گئے. اس وقت تو انڈیا کی بات ہو رہی, ہم پاکستان نے بیچارے نے تو ترقی اتنی کی
نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں امریکہ کی جو خصلت ہے, میں اس کا احوال بیان کر رہا تھا. امریکہ کی خصلت یہ ہے کہ اس نے دنیا بھر کے ممالک کو اپنی منفعت کے لیے استعمال کیا. آج ٹرمپ صاحب یہ الزام دیتے ہیں, وہ تو الٹی بات کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا بھر نے امریکہ سے فائدہ اٹھایا ہے, امریکہ کو استعمال کیا ہے, اسی لیے وہ دنیا بھر کے خلاف ٹیرف کی جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے. تو یہ تو اب اپنے بیانیے کی بات ہے نا کہ ٹرمپ کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا بھر نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے, امریکہ سے فائدہ اٹھایا ہے, لہذا وہ اب جواب بھی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. کینیڈا کی غلطی یہ ہے, اور جس کا احساس اب کینیڈا کو ہو گیا ہے کہ اس نے اپنی معیشت کے اپنے اقتصادیات کے تمام تر انڈے, وہ جو کہا
ایک ہی باسکٹ میں ڈال دی,
پوٹنگ آل دی ایگز ان ون باسکٹ, تو وہ غلط تھا. اسی لیے اب ایک نادان دشمن کا وار کینیڈا کے حق میں نعمت ثابت ہو رہا ہے, اس لیے کہ اب کینیڈا کو احساس ہوا ہے, یہ غفلت کی جو نیند تھی اس سے کینیڈا بیدار ہو گیا ہے, اور بیدار ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب اس کے سب سے قریبی حلیف اور دوست نے اس کو دھوکہ دیا ہے, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش.
سر آپ یہاں پہ یہ محسوس کریں کہ کینیڈا کے الیکشن ہوئے, امریکہ کی تھریٹ ہے, کینیڈین عوام نے سالیڈیریٹی کا ثبوت دیا. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے تک پولز ور ٹوٹل ڈیفرنٹ. اس کمیونٹی سے, اس معاشرے سے اگر میں اور آپ ایک چیز سیکھیں کہ جہاں اپنے وطن کی سوورنٹی کا معاملہ آ جائے تو قوم ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے.
قوم کے مفاد کی جہاں قوم کے مفاد کو زق پہنچنے لگے,
ٹھیک ہے, تو
وہاں جو ہوش مند جمہور ہوتے ہیں, جن کے ووٹ کو چرایا نہیں جاتا, جن کے ووٹ پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا, کوئی شب خون نہیں مارتا, وہ جمہور اپنے ملک کے اپنی قوم کے مفاد میں وہ صحیح فیصلے کرتے ہیں, جس کا ثبوت ابھی ہمارے کینیڈا کے جمہور نے دیا ہے. اور ایک ایسے شخص کو اپنی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے جو ان حالات میں بہترین قائد ثابت ہو سکتا ہے, اپنے تجربے, اپنی ماضی کے صلاحیتوں کے عنوان سے.
بڑی اچھی بات آپ نے کہی, بحیثیت پاکستانی اگر آپ اس چیز کو شیئر کریں. میں اگین میں ڈائریکٹ کوشچن پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا کہنا چاہوں گی, سے کینیڈا از این ایگزامپل, دا ہول نیشن اسٹوڈ اپ, انہوں نے ٹوٹل امریکہ کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا, ہمارا خسارہ نسبتاً کم ہو گیا. ویئر ایز اگر میں پاکستان کی طرف چلی جاؤں تو پہلگام کا واقعہ ہوا, اس کے بعد انڈس واٹر کو روکنے کی انڈیا نے بات کی, انڈیا نے اپنے ڈیمز میں ذخیرہ بھی کرنا شروع کیا, مگر وہ اتنا ذخیرہ کر نہیں سکیں گے کیونکہ نہری نظام تو بھی ان کے پاس ہے نہیں, کوئی ٹیوبل سسٹم بھی ان کے پاس نہیں ہے. انفارچونیٹلی پاکستان انڈیا کا ایک واقعہ نہیں, آج سے پہلے چار پانچ واقعات ہوئے, اور اس موقع پہ میں آج افسوس کا اظہار کرنا چاہتی ہوں, پاکستان میں اگین آج سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہوا ہے, کچھ لوگوں کی شہادت ہوئی ہے. ایک بندہ بھی نہیں بولتا کہ پاکستان میں آئے دن یہی والا ٹیررزم ہوتا ہے, بیکاز میں اور آپ وی آر کمپرومائز, ہم میں سے کوئی ایک بندہ ذکر نہیں کرتا. میں بات کر رہی تھی کہ سالیڈیریٹی آف کینیڈینز ٹو بی اے سوورن کنٹری. اب میں پاکستان کی طرف اگر آتی ہوں تو جب اس سے پہلے بھی حملے ہوئے تو ہمارے پالیٹیشنز نے کہا ہم نے ٹریننگ کی تھی. میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتی, ابھی کی بات کر لیں تو جناب خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہمیں امریکہ نے استعمال کیا, بالکل ہم نے رول پلے کیا, فورن میڈیا نے اس کلپ کو بیسیوں بار چلایا. पाकिस्तान में पॉलिटिकल
ने भी चलाया और हिंदुस्तान,
ठीक है,
हिंदुस्तान ने भी अक्वाम मुत्तहिदा में
चला को
इस्तेमाल किया,
ठीक है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अपने अपने मामलात ऐसे बुरे हैं कि हम इस वक्त में जब इंडस का मामला भी हुआ, जब इससे पहले भी, दीज आर ऑल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस बाय इंडिया। आई 100% गारंटी कि पाकिस्तान इटसेल्फ में जो अनसर्टेनिटी है इज बिकॉज ऑफ इंडिया एंड द फॉरेन कंट्रीज, बिकॉज दे डोंट वांट पाकिस्तान बी अ सेटल्ड कंट्री। पाकिस्तान में पीटीआई, मैंने बाकी पार्टियों का तस्करा करते हुए मैं पीटीआई की तरफ आ रही हूं, क्या प्रॉब्लम है कि हमने, और आपको पता है इंडिया इसको बहुत यूटिलाइज कर रहा है। आज इंडिया का कोई मीडिया आप उठा के देख लें, वो टूटी हुई जूती को और तोड़ने के चक्कर में है। हाँ जी, ये फौज ने फॉल्स फ्लैग खुद करवा लिया होगा, यानी एग्जैक्टली सेम थिंग एक पार्टी ने कही थी, आज ख्वाजा आसिफ ने कह दी, एग्जैक्टली सेम बयानियां पीटीआई के जो कारकुन है उनका भी है कि जी इन्होंने दरअसल फेवर्स लेने के लिए ये फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान ने करवाया। क्या हो गया कौम को, व्हाई दे डोंट लर्न फ्रॉम अदर्स, देर आर टाइम्स व्हाई डोंट दे गेट टुगेदर एंड सिट एट वन प्लेटफॉर्म टू फाइट फॉर दीज प्रॉब्लम्स।
देखो, पाकिस्तान के अवाम अपने मुल्क से मायूस हो चुके हैं, और मायूस क्यों हुए हैं
ये आंसर नहीं है।
नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं ये उन मुहर्रिकात का जिनका तुम जिक्र कर रही थी
जी,
वो किस सबब से हैं? इसलिए कि अवाम ने, पाकिस्तान के जमहूर ने भी बेदारी का सबूत दिया था, उन्होंने एक पार्टी एक कायद के हक में फैसला दिया था, और वो फैसला ऐसा था कि उस पर किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, उस फैसले को बदल दिया गया और उन लोगों को इख्तदार की मसनदों पर बिठा दिया गया जिनको अवाम अपने वाजे अक्सरियत से रद्द कर चुके थे, मुस्तरद कर चुके थे। तो हमारे तो मसाइल का जो हम अंबार तुम्हें नजर आता है वो हमने अपने घर को खुद आग लगाई है, अपने ही अपनी हरकतें हैं, अपने ही करतूत हैं, अपने ही आमाल हैं जो आज हमारे जो हमें आज ये दिन दिखा रहे हैं कि दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं, कोई तौकीर नहीं, कोई हुर्मत नहीं, कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं।
आपने बात की, मैं आपसे यहाँ ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अब से 3 महीने पहले आप चले जाते हैं, कनाडा के पोल्स वर टोटली डिफरेंट, ठीक है, मगर पोल्स चेंज हुए, क्या पाकिस्तान में अगर ये है, और मार्क कार्नी ने भी अपना एक बयानिया भी दिया, उन्होंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू टेल एवरीथिंग टू द पब्लिक बिकॉज हर बात अवाम में होनी भी नहीं चाहिए, मगर सहाफी बात कर लें, पॉलिटिशियन बात कर लें, दे ब्रिंग आम अवाम को खाम खा, और आपको पता है कि बहुत सारी फेक झूठी वीडियोज जनरेट की जा रही हैं बाय दी, मैंने पीटीआई को सारी जिंदगी सपोर्ट किया, बट जब मैं लैंग्वेज सुन रही हूं, चाहे वो पीटीआई और मुस्लिम लीग, ये दो पार्टियां हैं जिनके लोगों की लैंग्वेज इज इंतहाई लूज, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी अगर मुल्क में प्रॉब्लम है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, तो 2 मिनट के लिए तो अपनी जुबानों पर टेप लगा के चुप करके बैठ जाओ ना।
तुम जो बात कर रही हो, देखो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम कनाडा के अवाम की जमहूर की बेदारी और पाकिस्तान के अवाम की बेदारी का जो 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 जिक्र कर रही हो ना।
नहीं सर, मैं सॉवरेंटी की बात कर रही
हूँ,
हालात में, कनाडा हालात में हमें,
कनाडा के अवाम ने जब ये देखा कि उनकी सालमियत के वो खतरा लाहक है, और तो उन्होंने फौरन ये फैसला किया कि वो उस पार्टी के हक,
आइए पाकिस्तान में आ जाएं, बाप
वोट देंगे। पाकिस्तान के जमहूर ने भी पिछले बरस यही फैसला किया था, लेकिन उनके फैसले को बदलने वाला कौन था?
चलिए आगे आ जाए, आज अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर मुनीर अमेरिका से जाते हैं वो भी गलत हो गए, बरकी साहब अमेरिका से जाते हैं वो भी गलत हो गए, आतिफ साहब भी गलत हो गए, अमीन गुंडापुर भी गलत हो गए, शेर मरवत भी गलत हो गए। आपका हर बंदे को पार्टी में जितनी टूट फूट है, आप ये कहते हैं कि वो गौर अयूब जो है वो भी करप्ट है, बैरिस्टर गौहर भी करप्ट है, अमीन गंडापुर भी करप्ट है, तो फिर पारसा कौन है पीटीआई में?
देखो बात जो तुम बात कर रही थी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तो कौन सी जमात है, सियासी जमात, जिसने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान ने ये ड्रामा खुद रचाया है और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है?
ठीक सर,
हर पार्टी ने ये कहा, तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा, इमरान खान ने ये बयान दिया कि कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है दिफा, मुल्क के दिफा करने के लिए।
सही,
इसमें तो कोई गलती नहीं है ना?
ठीक सर,
कोई पाकिस्तान से गद्दारी नहीं कर रहा, कोई पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बयान नहीं दे रहा। सवाल यह है कि आपने अपने मुल्क में कौन सा ऐसा निजाम रहने दिया है जहां अवाम की राय की वक्त हो, जहां अवाम की राय, देखो ना कनाडा के अवाम ने जो फैसला किया, किसी ने उस फैसले को बदलने की कोशिश नहीं की।
ठीक सर,
पाकिस्तान के अवाम ने जो फैसला किया था उसको बदल दिया गया, इसलिए कि चंद अफराद वो जो इख्तदार की कुर्सियों पर हावी हैं, जो काबिज हैं, वो ये समझते हैं कि वो जो कौम के मुतालिक फैसले करेंगे वही सच होंगे, वही दुरुस्त होंगे, बाकी कौम तो जाहिलों की है, अनपढ़ लोगों की है, उनके फैसले को कबूल नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान का अलमिया तो ये है।
ठीक सर, ठीक सर, अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान का हामी व नासिर रहे, आमीन सुमामी। आखिरी सवाल मेरा आपका कि बांग्लादेश ने कहा है कि बांग्लादेश के एक्स आर्मी ऑफिसर ने ये कहा कि बांग्लादेश को जो सिक्स स्टेट्स बिसाइड बांग्लादेश हैं वो ले लेनी चाहिए, शायद आपकी नोटिस में ये न्यूज गुजरी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के ताल्लुकात अपने नेबर से थोड़े इतने अच्छे नहीं हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की बात कर लें, चाहे आप ईरान की बात कर लें, चाहे आप इंडिया की बात कर लें। इंडिया को देख लें तो इंडिया के ताल्लुकात अपने नेबर से इतने अच्छे नहीं, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, भूटान की बात कर लें,
ताल्लुकात किसी पड़ोसी।
व्हाट इज द फ्यूचर?
फ्यूचर ये है, फ्यूचर का फैसला तो अवाम करेंगे, हर मुल्क के अवाम को अगर ये हक हासिल हो कि वो अपने फैसले खुद कर सके और चंद अफराद बंद कमरों में बैठकर उनकी तकदीर के फैसले ना करें, तो वो कौम सही राह पर चलेगी। कनाडा उसका जीता जागता सबूत है कि यहां के अवाम ने जो फैसला किया अपने मुल्क के हालात को देखते हुए, अपने मुल्क की सालमियत और खुदमुख्तारी को लाहक खतरात के पेश नजर उन्होंने जो फैसला किया, उस फैसले को किसी ने बदलने की कोशिश नहीं की। अवाम जिस दिन इस पाकिस्तान के अवाम खास तौर पे जिस दिन इस बात के हकदार हो जाएंगे और कि वो उनका किया हुआ फैसला बरकरार रहे, उसको कोई तब्दील न कर सके, उस दिन से पाकिस्तान के हालात बदलने शुरू हो जाएंगे।
कनाडा की अगर आप बात करें तो बड़ा खूबसूरत मुल्क है। मैंने आपसे कहा कि हम मुसलमान, माजर के साथ आपके दिल को बड़ी बात बुरी लगनी है, हम बहुत कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। कनाडा में एक सीट थी जहां पे डिफरेंस और बहुत सी जगहों पे रिकैलकुलेशन हो रही है, कंजर्वेटिव का नहीं लिबरल का कैंडिडेट 35 सीट से विन कर गया था और एक क्यूबैक ब्लॉक क्यूबैक का कैंडिडेट जो है ना 35 वोटों से, तो उन्होंने इहतमाल गलती को दूर करने के लिए रिकाउंट किया तो ब्लॉक क्यूबैकवा का जो कैंडिडेट है वो 44 वोट से जीत गया। एक और रिकाउंट हुआ है ये हमारे मिल्टन के इलाके में, परमगिल साहब जीत रहे थे और बिकॉज यहां पे मार्जिन बहुत कम था, वो ह्यूमन एरर आ सकती है, फ्यू वोट्स का डिफरेंस था, अल्टीमेटली कंजर्वेटिव लॉस्ट दैट सीट और लिबरल्स ने वो गेन की है। दिस इज एन ऑनेस्ट सिस्टम, मगर जितना बंदा जो बहुत मजहब का हवाला दे तो आप समझिएगा वहाँ गड़बड़ जरूर है। सर आप अपना कथा बयान कीजिए।
हाँ, आज जो वो जो ट्रम्प का रवैया था और मार्क कार्नी का जो रवैया था शराफत का, उस पर मैंने ट्रम्प साहब के हवाले से ये कहा है कि तुमने नरगिसियत को जानते हो ना,
सेल्फ अपने
इश्क में मुब्तला जो गिरफ्तार होता है,
अपने गिर्द घूमते रहना,
क्योंकि वो जो यूनानी हवाला है वो किस्सा यही कहता है। यूनानी फोकलोर ये कहती है कि एक शख्स था नार्सिसस उसका नाम था, वो एक दिन एक तालाब के करीब पास बैठा हुआ था। उस तालाब के पानी में उसने अपना अक्स देखा और उसको अपनी सूरत इतनी अच्छी लगी कि वो वहीं बैठा रह गया। वहां से इस कॉल ने जन्म लिया कि नरगिसियत का नार्सिसिस्ट जो होता है वो अपने इश्क में मुब्तला होता है। तो ट्रम्प भी उसकी दुनिया में सबसे नुमाया मिसाल है। तो मैंने ये कहा कि नरगिसियत के मर्स का मारा हुआ लईम, नरगिसियत के मर्स का मारा हुआ लईम, अकवाम आलमी के जो करता है फैसले, अकवाम आलमी के जो करता है फैसले, उफ्ताद इससे बढ़ के तो मुमकिन नहीं कोई,
उफ्ताद
इससे बढ़ के तो मुमकिन नहीं कोई, शैतानी चेले उसके बढ़ाते हैं सिलसिले,
शैतानी चेले उसके बढ़ाते हैं सिलसिले। एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट ओनली डोनाल्ड ट्रम्प, इट इज अराउंड द वर्ल्ड। ऑटोमन्स के गिरने की वजह भी यही थी कि उनके इर्द गिर्द मदाह सरा लोग मौजूद थे। आप मुगल्स का देख लें, बादशाहों के दरबार में कसीदे पढ़ने वाले कसीदा को, वो हकायक से उनको दूर रखते थे। हर मुआशरा, हर मुल्क जो हकीकतों से दूर हो जाएंगे यही हाल होगा। थैंक यू वेरी मच सर, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टूडे माशाल्लाह।
थैंक यू।
करामत भाई इज गेटिंग यंगर डे बाय डे, एंड इमरान खान ने आ जाना है और करामत भाई ने फिर से अपनी पोजीशन पे वापस, ताल्लुकात बना के रखिएगा, ही कैन बी एम्बेसडर ऑफ एनी कंट्री।
इंशाल्लाह इमरान खान वापस आ जाए। इमरान खान जब वजीर आजम बना है ना, तो मेरे जो कुवैत के दोस्त थे उन्होंने कितनों ही ने मुझे पैगाम भेजा कि सर आप इमरान खान को याद दिलाइए, उसने हमसे क्या कहा था। इमरान खान ने, जब मैंने उसके लिए फंड रेजिंग की थी, दो डिनर किए थे और कोई तकरीबन $4,00,000 जमा करके दिए थे कुवैत में, तो पाकिस्तानियों के एक मजमे वो दावत हो रही थी और वहां उसने कहा था कि जिस दिन मैं वजीर आजम हो गया तो मैं एम्बेसडर गौरी को पाकिस्तान का वजीर तालीम लगाऊंगा।
सी आप तो दूर नहीं होते हैं, दूर नहीं।
तो मेरे दोस्तों ने कहा कि सर आप इमरान खान को याद दिलाइए। मैंने कहा मैं क्यों याद दिलाऊं भाई, अगर वो वाकई संजीदा था तो उसे याद होना चाहिए।
बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताती हूँ, बाय द टाइम व्हेन ही वाज इन अ पोजीशन फॉर 3.5 years ही वाज सराउंडेड बाय द क्रुकेड्स, जिसमें ही हिमसेल्फ अपॉइंटेड फिरदौस आशिक अवान इन द प्रोविंस एंड देन इन द फेडरल। हम आगे चलते हैं।
मैं रिकॉर्ड पे कह चुका हूँ कि इमरान खान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो उसमें इंसान की पहचान नहीं।
बहुत शुक्रिया। और मैं सर अभी आपके साथ शेयर करती चलूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आई है। पाक फौज के शोभा तालुकात आमा के डायरेक्टर जनरल, उन्होंने कहा है कि बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फिजा में मिसाइल दागे गए, भारत ने अपनी फिजाई हदूद से हमला किया और 3 मुकामात को निशाना बनाया। पाकिस्तान के जानिब से इस हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुजफ्फराबाद में धमाकों के बाद बिजली बंद हो गई। इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज राइट नाउ।
और तुमने ये खबर नहीं सुनी कि चनाब کے پانی کا بہاؤ رک لیا
مگر وہی میں نے آپ سے کہا نا ان کے پاس ٹنلز نہیں ہیں, ان کے پاس ٹیوبز نہیں ہیں, ان کے پاس نہریں نہیں ہیں, کتنا بار دس از اے ویری اسٹرینج تھنگ
انہوں نے وہ بنا لیے ہیں
جی. بھارت نے پاکستان پر اس وقت حملہ کیا, میرے پاس ابھی یہ نیوز آئی ہے, اور لیٹس سی ہاؤ اٹ ورکس. سر آپ کا بہت شکریہ. ظاہر ہے یہ پروگرام
اللہ پاکستان کو محفوظ,
آمین آمین آمین, ٹوگیدر وی کین بی اسٹرانگ. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے. پاکستان پہ یہ جو ایگزیکٹلی اپارٹ وی فال, ڈی جی آئی ایس پی نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جواب دیا جائے گا. یہ فضائی حدود سے حملہ کیا گیا, پاکستان پہ 3 مقامات کو نشانہ بنایا گیا. لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. ظاہر ہے اس وقت آپ کو بتایا پاکستان میں رات کا وقت ہے. ویل ٹیک سم اسپانسرز, ویل کم بیک, اسٹے ٹیونڈ. ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان اسپانسرز کی, تعاون سے جن کے توسط سے یہ پروگرام پیش کرتے ہیں. اپنے اسپانسر سے ہم آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے. ہمارے ایک اسپانسر جو کہ لائف ڈسیبلٹی کریٹیکل النس اینڈ کینیڈا کی ون آف دا فائنسٹ انشورنس کمپنی سن لائف, اٹس ناٹ اونلی کینیڈا اٹس انٹرنیشنل کمپنی. بہت ساری بڑی کمپنیاں اپنے گروپ انشورنس کے لیے سن لائف پہ کاؤنٹ کرتی ہیں. جناب پردیپ جی سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. پلیز اسٹے ٹیونڈ. یوٹیوب پہ ہم سے اجازت چاہیں گے. میری ریکویسٹ ہے پلیز ڈو سبسکرائب آور چینل. وی لک فارورڈ فار یور فیڈ بیک. مگر تنقید تعمیری ہونی چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
جی ہاں, موٹر کار کا تو معلوم نہیں, لیکن آپ کو آپ کے بنگلے تک پہنچائیں گے. جی یعنی مارگیجز کے میانک بھٹناگر جی. ہر طرح کی مارگیجز میں کرتے ہیں اسپیشلائز, وہ ریزیڈینشیل ہو, کمرشل ہو, پرائیویٹ ہو, فرسٹ یا سیکنڈ مارگیجز, اور یا پھر آپ ہیں فرسٹ ٹائم ہوم بائر. میانک بھٹناگر جی 647-702-2023-647-702-V-23.
مکان تے کار وچ سکون دا انتر ہوندا ہے, تے اسی کار ایہو جہا لبدے ہاں جتھے جا کے سکون ملے. کی تسی وی اپنے لئی سکون لب رہے ہو؟ تے اکو نا یاد رکھو, عارفہ مظفر. عارفہ مظفر تہاڈے گھر دے سکون دا سپنا ساکار کرن دے وچ مدد کر سکتے نے. عارفہ مظفر سٹی اسکیپ ریئل اسٹیٹ لمیٹڈ بروکریج دے نال سیلز ریپرزینٹیٹیو نے. ہنے کال کرو عارفہ مظفر جی نو 647-898-6245. 647-898-6245.
خوبصورت دانت, با اعتماد مسکراہٹ اور با اعتماد گفتگو. آپ کی اور آپ کے خاندان کی مسکراہٹوں کی ضمانت. فلنگز کراؤنز بریجز کلیننگ ایکسپٹنگ نیو پیشنٹس. فری کنسلٹیشن دانتوں کی سنبھال کے لیے ڈاکٹر پدمجا 310 شیپرڈ ایونیو ایسٹ 2997466.
کیا آپ یا آپ کی فیملی ڈیتھ ڈسبلٹی یا کریٹیکل النس جیسی ناگہانی صورتحال کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں تو سن لائف کی پردیپ جی کا نام یاد رکھیے گا 416-894-5872.
جی ہاں, صلاح مشورے اور کسی بھی پالیسی کے ریویو میں پردیپ سنگھ آپ کی پوری مدد کروں.
ٹرسٹ وردی آنیسٹ چارٹرڈ لائف انڈر رائٹر اینڈ کینیڈین ہیلتھ اسپیشلسٹ مسٹر پردیپ فرام سن لائف 416-894-5872.
اور ہر ٹیوزڈے کو میرے ٹاک شو میں ضرور شامل ہوں.
مزے مزے کے مزے کے کباب
کھانا ہو تو آ جاؤ شاہین ٹکا اور کباب.
آل یور فیوریٹ ڈشز پریپیئرڈ ٹو پرفیکشن ایٹ شاہین ٹکا اینڈ کباب.
مجھے مزے دے چکن ٹکے کباب بریانی دال تڑکا,
لاہوری اسٹائل ناشتہ, مزیدار کڑھائی, ماؤتھ واٹرنگ کباب, سیزلنگ باربیکیو آئٹم.
شاہین ٹکا اور کباب
ان فلیمنگٹن مال.
والیا ٹریفک لیگل سروسز سے جناب RS والیا.
کیئرلیس ڈرائیونگ,
سپیڈنگ یا پھر ایکسیڈنٹ,
فیل ٹو ریمین اسٹاپ ایٹ دا سین,
ریڈ لائٹس یا پھر سیٹ بیلٹس,
پرمٹ ڈرائیو وداؤٹ انشورنس,
ریسنگ, اسٹوڈنٹ ڈرائیونگ یا پھر کاٹ وائل یوزنگ فون,
سپیڈنگ,
RS والیا آپ کی ٹکٹ سے نجات دلوائیں گے اور آپ کے پوائنٹس بھی سیو کریں گے. 905-454-2112, 454-2112.
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही, बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात, पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। पायल उसके असलम भाई को कॉल करें ना एट 9057907879, दैट इज 9057907879।
अयो इतना खूबसूरत घर,
आपने भी बेसमेंट की रेनोवेशन करवाना है तो राब्ता करो, एक चीता मेरे हाथ में लगा। क्या कमाल की रेनोवेशन और दाम बहुत मुनासिब।
कौन सी रेनोवेशन? टैरिफ लग रहे हैं, भूल जाए सब कुछ।
अरे बाबा चिंता ना करो, नैशिक रेनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन, लीगल बेसमेंट, साइड एंट्रेंस, वॉशरूम, किचन, पेंट, फ्लोरिंग, तमाम काम सिटी परमिट के साथ करवा के देते हैं। बहुत मुनासिब दाम है और भाई आजमाइश शर्त है, गारंटीड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल अली 416-838-7837।
एना सोना कर लिया, हुन अप्लायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अप्लायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे, जिसे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, थ्री पीस किचन बंडल, इसके अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, फिर टीवी सेक्शन एच सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्प, हर साइज से हर ब्रांड का टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 Bowie Drive West Brampton, ya call karo 905-458-2898-905-450-2898-770।
आपका अपना चैनल है, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह तबारिक व तआला आप तमाम को जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। जिंदगी जीतों के मेले हुआ करता है, हमारे एक बहुत प्यारे स्पॉन्सर आज से नहीं 7 साल से, और जब ये प्रोग्राम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स हम पेश करते हैं द क्रेडिट गोज टू दीज स्पॉन्सर्स। जनाब प्रदीप जी को से मुलाकात कराऊंगी, आपकी सन लाइफ का जब हम तस्करा करते हैं, मगर प्रदीप जी बहुत प्यारे हैं, साबरी ब्रदर्स की कवालियों का जब तस्करा हो तो सुनते भी हैं, आप लोगों के लिए लेके भी आते हैं। आइए इसी कवाली से प्रोग्राम को शुरू करते हैं और फिर मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी, गेट रेडी। अल्लाह तबारिक व ताला मेरे पे, आप पे, हम सब पे अपना करम करे। क्या खूबसूरत कलाम है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
भर तो झोली हम सब की, भर तो झोली मोहम्मद, भर तो झोली आदाजी भर तो झोली।
तुम्हारे आस्थान से जमाना क्यों नहीं पाता,
तुम्हारे
तुम जमाने के मुख्तार हो या ना,
सभी ब्रदर्स का ये कलाम और भरत झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली बिल्कुल साहब आप लोगों के लिए पेश कर रहे हैं। मैं इसको पूरे के पूरे कलाम को आपकी खिदमत पेश करूंगी। लेट मी इंट्रोड्यूस आर सच अ वैल्यूएबल एंड वंडरफुल प्रदीप भाई। प्रदीप भाई गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
थैंक यू वेरी मच आरिफा जी, और सभी आपके लिसनर्स को मेरा नमस्कार, सच्चीकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टॉक शो।
प्रदीप जी कनाडा आए हुए, जब से आप आए हैं आप सन लाइफ के साथ हैं, कनाडा से पहले आप कहाँ पे थे?
कनाडा से पहले आरिफा जी मैं था मिडल ईस्ट में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और उसके पहले मैं था इंडोनेशिया में, और ऑफकोर्स ओरिजिन तो आप जानती हैं, इंडिया से मेरा दिल्ली से ताल्लुक रखता हूँ।
इंडोनेशिया और इंडोनेशिया इन अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, और प्रदीप जी बड़ी अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, हमेशा क्या कहते हैं फूड फॉर थॉट मुझे इनसे मिला करती होती है। व्हाट अ वंडरफुल पर्सन। सन लाइफ के साथ आपका ताल्लुक है प्रदीप जी? सन लाइफ इज, जब हम बात करते हैं, इट्स अ कनेडियन कंपनी विच इज एन इंटरनेशनल कंपनी। प्लीज सन लाइफ के बारे में बताइए और आप अपने बारे में बताइए।
सन लाइफ बहुत पुरानी कंपनी है आरिफा जी, 1865 से ये काम कर रही है, और ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कनाडा एज अ नेशन उसका वजूद 1867 से शुरू हुआ, यानी ये कनाडा बनने के भी पहले, दो साल पहले से सन लाइफ काम कर रही है इन लाइफ इंश्योरेंस फील्ड में। ये वाहिद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है कनाडा में जिसे 100 मोस्ट सस्टेनेबल ग्लोबल कॉरपोरेशंस में शुमार किया गया है। बहुत ही स्ट्रांग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इसकी आरिफा जी, और सबसे बड़ी बात जो मुझे इम्प्रेस करती है इसकी, जिसलिए मैं 26 साल से टिका हुआ हूं, वो है इसकी कस्टमर सर्विस। हर क्लाइंट के पास एक अपना डेजिग्नेटेड एडवाइजर होता है, और दूसरी बात क्या है कि क्लेम टाइम इज वेरी वेरी स्मूथ। तो यही दो रीजंस हैं जिसलिए मैं इतने लंबे टाइम से हूं, और ये कंपनी भी कस्टमर्स में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है।
इन अदर वर्ड्स कि आपका कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द कंपनी, कि बेशक कंपनी पीछे है बट यू आर रिप्रेजेंटिंग, यू आर लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, और आपको फखर है इस बात का कि जो सर्विसेज देते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, वो आप एग्जैक्टली वही सर्विसेज डिलीवर करते हैं।
बिल्कुल सही आरिफा जी आपने कहा, और कई बार मैं अपने कस्टमर्स की हेल्प करने के लिए कई और कंपनियों से भी डील करता हूं। मैं आपको कंपनियों का किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी से अगर बात करनी हो तो आदमी के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन सन लाइफ में 8 to 8 मंडे टू फ्राइडे आप हेड ऑफिस कॉल लगाएं और फौरन जवाब मिलता है आपको। यही रीजन है कि हम लोग सर्विस दे पाते हैं। एडवाइजर कहां से सर्विस देगा, उसको बैकअप चाहिए,
और वो दोबारा लोगों में वापस भी नहीं जा सकता, अगर एक बार गलत हो जाए तो यू कैन नॉट गो बैक। सो दिस इज योर कॉन्फिडेंस एंड यू नो
इन योर कंपनी एंड इन योर प्लान्स।
एग्जैक्ट। प्रतीक जी महंगाई बहुत हो गई है, आपको पता ही है जिंदगी इतनी बदल गई, कैसे हो सकता है कि कम से कम पे करें और मगर इन केस ऑफ डेथ या किसी मौके पे भी 2.5 लाख तक आप
2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। आपने बहुत सही सवाल पूछा। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो चलता है कलेक्टिव शेयरिंग ऑफ रिस्क के ऊपर। रिस्क का मतलब जो खतरा है ना, कलेक्टिव रिस्क शेयरिंग के का कॉन्सेप्ट है। एक कम्युनिटी में अगर आप 100 लोगों को कवर करती हैं तो ऐसा नहीं कि सबके साथ ही कोई ट्रेजेडी होगी या हादसा होगा, उसमें से किसी एक के साथ होगी, जिसके साथ होगी उसके ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ेगा, लेकिन अगर पूरी कम्युनिटी मिलके उस बोझे को उठा रही होगी और सब लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो 2.5 लाख, 5 लाख या 10 लाख भी अफोर्ड कर सकती कंपनी। ये कलेक्टिव शेयरिंग जो है उस वो कॉन्सेप्ट है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का। इसीलिए किसी आदमी ने एक प्रीमियम दिया $100 का, 2.5 लाख का कवरेज दिया, कल ही उसके साथ हादसा हो गया, कल ही वो डेथ कर गया, तो कंपनी दे सकती है उसको, क्योंकि कंपनी पता है परसेंटेज वाइज कि कितने लोगों के साथ इस तरह होगा, कितने लोगों के साथ साल भर में होगा, कितने परसेंटेज के साथ 10 साल 20 साल और कितनों के साथ नहीं होगा।
एज लॉन्ग एज कॉन्ट्रैक्ट इज देयर।
करेक्ट।
हाउ डिफिकल्ट और इजी इन दिस टेक्नोलॉजी इज टू गेट अ लाइफ इंश्योरेंस और क्रिटिकल इंश्योरेंस?
बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहली बात तो यह है, दूसरा कॉन्सेप्ट है लाइफ इंश्योरेंस का कि कॉन्सेप्ट ऑफ अटमोस्ट ट्रस्ट। लाइफ इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है कि आपसे जो पूछा जाए और जो भी आपने जवाब दिया वो पत्थर की लकीर की तरह है। आप इसलिए एकदम ठीक ठीक बयान करें, कोई चीज छिपाए नहीं, कोई चीज दबाए नहीं, क्लियर कर दें। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट फेथ। तो किसी को सेटअप करना इसका बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। आप किसी इंश्योरेंस एडवाइजर से, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 416-894-5872। मैं आपसे बात करके, आपकी रिक्वायरमेंट एसेस करके आपको प्लान सजेस्ट करूंगा और जो भी आपको पसंद आएगा उसको हम बनाएंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन और एक प्रीमियम लिया जाएगा और आपका कवरेज उसी मोमेंट से स्टार्ट हो जाएगा।
सी, मैंने आज साइन किए हैं तो माय कॉन्ट्रैक्ट, मेरा फाइनलाइज हो गया, आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, इट विल स्टार्ट इमीडिएटली।
नहीं आरिफा जी, उसके भी बहुत पहले।
अच्छा।
आज मेरी आपकी मुलाकात है, मैंने आपसे आपके डिटेल्स लिए हैं, है ना। इसके बारे में, इसका वेरिफिकेशन बाद में होगा, अंडर राइटिंग करेगी कि ब्लड टेस्ट करना है, कि यूरिन टेस्ट करना है, कि पैरामेडिकल होगा, कि क्या होगा, पर आज आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी और साथ में अपनी एक महीने की प्रीमियम भर दिया।
अच्छा, तो वही
तो आपका जैसे ही आपने साइन किया उस पर और मैंने साइन किया, आपका कवरेज उसी मिनट से स्टार्ट हो गया। और इसकी इम्पोर्टेंस ये, एक पाकिस्तानी वो थे ड्राइवर, वो आए मेरे क्लिक के साथ ही था, मैं भी ऑफिस में था, उन्होंने कवरेज लिया 2.5 लाख का सैटरडे के दिन और संडे के दिन वो एक्सीडेंट में वो मारे गए। तो वो इंतकाल करके संडे के दिन, उनका चेक भी क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि सैटरडे शाम की बात थी, वो चेक क्लियर होने में भी टाइम लगता है, लेकिन संडे को हुआ क्योंकि उन्होंने अपने पूरे डिटेल्स दे दिए थे, बैंक की इन्फॉर्मेशन दे दी थी और वॉल्ट चेक पकड़ा दिया था। उनका कवरेज सैटरडे शाम से शुरू हो गया था, तो संडे को हुआ हादसा, कंपनी ने वेरीफाई किया कि इनके जो डिटेल्स थे वो ठीक थे कि नहीं थे, उन्होंने ठीक डिटेल्स दिए थे, तो 2.5 लाख का उन्होंने कवरेज लिया था, कंपनी ने 2.5 लाख उनकी फैमिली को दी।
रेपति जी ने कहा कि इनका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस यही है कि कंपनी में जो हम कहते हैं, क्योंकि इन्होंने तो हर रोज अपने क्लाइंट्स को मिलना होता है, वही फोन नंबर है। सिंस आई नो हिम ही हैज ओनली वन फोन नंबर। अपना फोन नंबर दीजिए सर।
416-894-5872 आरिफा जी, शुरू से 98 से जब से मैं आया हूं मेरा यही सेल फोन चला आ रहा है।
एक फिर से नंबर दीजिए
416-894-5872 आरिफा जी,
8948-7672। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉल कर लीजिएगा, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। आप इनके दफ्तर में भी जा सकते हैं, ये आपके घर भी आ सकते हैं
और जूम पे भी कर सकते हैं हम लोग,
जूम पे। और मैं आपको यकीन कीजिएगा, जाती तौर पे बताती हूँ कि आई हैव सीन पीपल, जिसमें मुझे, मैं नाम नहीं लूंगी, एक शख्स उसने पॉलिसी ली और फिर उसको फैमिली ने कहा तुम अच्छे भले जवान जानो, तुम्हें क्या हो जाना है, दोस्तों ने, फैमिली ने नहीं, दोस्तों ने उन्हें पॉलिसी कैंसिल करा दी। और आप यकीन कीजिएगा उसको फिर सिरोसिस लिवर हुआ था, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ हो, मैं भी आपके साथ ही शामिल हूं। एक और शख्स 770 पे हुआ करते होते थे, तो मुझे याद है उन्होंने भी अपनी पॉलिसी कैंसिल कराई। तो इट्स नॉट के मतलब मैं कोई डरा रही हूं, बट आई थिंक इस मुआशरे के बीच में जो खुराक हम खाते हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है।
आरिफा जी बिल्कुल, आजकल इतने केसेस हो रहे हैं। मेरे क्लाइंट है, बहुत ही हैंडसम पाकिस्तानी लड़का है, 42-43 साल का होगा, शादी हुई और अभी उसकी वाइफ आई है कनाडा में, उस पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद 6 महीने हुए हैं, उनको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ है। अब आप बताइए कि कितनी सीरियस बात है। हालांकि उन्होंने मेरे कहने पे क्रिटिकल इलनेस ली थी, चाहे छोटी ही ली थी, लेकिन जो वो अफोर्ड कर सकते थे, पर वो पैसे जब उनको मिले टैक्स फ्री, वो उन्होंने उन पैसों ने भी उनकी बड़ी हेल्प की।
बहुत अच्छा। ये अभी आपने जो बात की कि बाजू का डर ये लगता है कि इंश्योरेंस वाले को बुलाएंगे और ये ना हो कि मेरी बसात से बाहर, व्हाट आर द प्रेशर्स, और क्या कोई शख्स अगर आज उसका हाथ तंग है तो वो छोटी पॉलिसी से छोटे
बिल्कुल बिल्कुल छोटी से करें आरिफा जी, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हमें बहुत बड़ी चीज चाहिए जो कि हम आज नहीं कर सकते, उससे अच्छी बात है कि हम जो छोटा अफोर्ड कर सकते हैं उससे शुरू करो, और जैसे जैसे आपके हाथ में और बरकत आएगी वैसे वैसे आप बढ़ाए चले जाएं। एक आदमी 10 मिलियन की पॉलिसी तक के इंश्योरेंस कवरेज अब तक ले सकता था, अब ये लिमिट बढ़ा के 100 मिलियन की कर दी गई है, कि बस यही है कि आपको प्रूव करना है कि आपकी इतनी ज्यादा जरूरत क्या है, अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है। तो इसलिए अगर किसी ने लाख, दो लाख, दस लाख की पॉलिसी ली कोई बड़ी बात नहीं। आप देखें घर कितने महंगे हो गए आजकल। मेरा नंबर 416-894-5872।
मुझे ये बताइएगा कि क्लेम्स जब करते हैं तो बाजू का चीज लेना बहुत आसान होता है, पेपर वर्क बहुत मुश्किल होता है, डू यू हेल्प दैट प्लीज?
बिल्कुल हेल्प करते हैं हम लोग। और एक और बहुत अच्छी बात है आरिफा जी कि सन लाइफ का कॉल है लोगों के साथ कि अगर आपकी पॉलिसी 5 साल चल चुकी है तो उसके पैसे हम 5 बिजनेस डेज में देंगे, 5 बिजनेस दिनों के अंदर देंगे, अगर डेथ कनाडा में हुई है और कोई इसमें कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, किसी तरह का शक व शुभा नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि अगर 1.5 लाख तक की पॉलिसी है, 5 साल चल चुकी है, तो हमें उसके लिए क्लेम भी नहीं बनाना पड़ता आरिफा जी, उसके लिए सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट हम मंगवाते हैं और उनको हेड ऑफिस भेज के कंपनी खुद पता कर लेती है कि फ्यूनरल कब हुआ फ्यूनरल सर्टिफिकेट से, और फिर डायरेक्ट चेक भेज देती है। और अगर आपके पास किसी तरह का कोई परेशानी है बैंक में कि कुछ बैंक अकाउंट बंद रहे चल रहे हैं या फ्रीज कर दिए गए, तो कंपनी आपके जो भी आप चाहें बैंक अकाउंट उसमें पैसे ट्रांसफर कर देती है, तो आपको ये डर नहीं कि चेक आ रहा है नहीं आ रहा है, कहां चला गया, खो गया।
अपना नंबर दीजिए प्लीज।
416-894-5872। सुनने में बातें लगता बहुत सिंपल है लेकिन जब किसी आप पढ़ती
है
तो फंड्स जब ट्रांसफर करती है कंपनी डायरेक्ट उसके अकाउंट में, उसको बहुत एक हौसला बनता है कि मेरा पैसा डिस्प्लेस नहीं होगा, डिले नहीं होगा,
कोई शक नहीं। और मैं और हम में से कभी नहीं सोचता कि हम बीमार भी हो सकते हैं। मेरे बहुत अच्छे काशिफ भाई मिसेस सागा में रहते हैं, आपको याद होगा 15 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ था, जवान जान बच्चा, हमें रात को 2 बजे ही एक्सीडेंट हुआ था। ही वॉज कमिंग फ्रॉम रिजवे की मॉल से, रात को 2:15 बजे के करीब है, यंग लड़का 21-22 साल का लड़का, एंड ही डाइड विद एक्सीडेंट। तो साहब ऑफकोर्स ये सब कुछ अपनी जगह पे है, मगर जिंदगी ने इसी तरह चलते रहना है, जो जिंदा हैं उन्होंने अपनी मर्जी से मर नहीं जाना, अखराजात ने इसी तरह चलते जाना है, बैंक ने और बाकी लोगों ने नहीं आना। मैं सर मेरा एक मेरे दिमाग में सवाल आया, आजकल गेन टैक्स ने बड़ा मारा हुआ है, आपको पता ही होगा, तो ये जो से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इसमें क्या टैक्सेस भी हैं?
इंडिविजुअल पॉलिसी जैसे मेरी पॉलिसी है जिसमें मेरी वाइफ बेनिफिशियरी है, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है, ये टैक्स फ्री पॉलिसीज होती हैं कंप्लीटली कनाडा में। और दूसरी बात एक और है, क्रेडिटर प्रोटेक्टेड है, यानी कि मेरी वाइफ को अगर मेरी डेथ पे पैसे
मिलते हैं
तो उसको कोई ये नहीं कह सकता कि प्रदीप जी ने हमसे लोन लिया था तो इसलिए हमें 50,000 दो या 1 लाख दो, या हमारे बड़े दोस्त थे उन्होंने कहा था भाई हम छोड़ जाएंगे कुछ। नो बडी कैन फोर्स माई वाइफ। और मेरा नंबर एक बार फिर से है 416-894-5872। आमिर
जी बिल्कुल, प्रदीप जी का नंबर 416-894-5872।
और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, प्लीज फील फ्री टू गिव मी अ कॉल। आपके पास किसी भी कंपनी का प्लान है उसको मैं आपके साथ रिव्यू करूंगा, उसकी कोई फीस नहीं है, आप मेरे ऑफिस आए।
बहुत शुक्रिया, अपना नंबर दीजिएगा फिर हम कवाली की तरफ लेके चलते हैं।
416-894-5872 आरिफा जी,
894-5872 प्रदीप जी का नंबर है। आइए साहब, अल्लाह तबारिक ताला से दुआ है कि आपको भी जिंदगी से तंदुरुस्ती रिज़्क़ की बरकत अता फरमाए। اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو صحت سے رکھے. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. میری ریکویسٹ ہے, دیر از نو آبلیگیشن. پردیپ جی کا نمبر 416-894-5872. بھر دو جھولی میری یا محمد.
تھینک یو عارف بھائی, اگلے ٹیوزڈے پھر ملاقات ہوگی
انشاءاللہ.
Let's go.